अर्पिता उसकी बातें सुनकर कुछ सोच रही थी। समर्थ उसके पास आकर बोला, आप क्या सोच रहे हैं अर्पिता? अर्पिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, समर्थ, अगर हम आपसे कुछ कहें तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? इतना बोलकर अर्पिता ने अपने आंसू पोंछे और वो समर्थ की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगी। समर्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस एक बार बोलकर तो देखिए अर्पिता। अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, समर्थ, वो हम अभी मासा से इस डाइवोर्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, वो कन्फ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात है अर्पिता, हमें लगता है कि मासा को ये बात पता होनी चाहिए। अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम अभी मासा को ये बात बताने के लिए तैयार नहीं हैं। समर्थ अर्पिता की बात सुनकर कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी अर्पिता ने कहा, प्लीज़ समर्थ, आप हमें समझाने की कोशिश मत करिए, हमने बहुत सोच समझकर ही फैसला लिया है, हम अभी मासा को इस डाइवोर्स के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि मासा की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन में एक और टेंशन लें। अगर ये डाइवोर्स की बात मासा को पता चली तो वो परेशान हो जाएंगी, फिर वो जयराज जी से बात करने के लिए यहाँ बुलाएंगी, फिर वो यहाँ आकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं कि अभिमन्यु भाईसा के यहाँ पर ना होने पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह से चाचा चाची मासा के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसके बाद ये सब अभी एकदम से अगर मासा के सामने आएगा तो हमें नहीं पता वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। इतना बोलकर अर्पिता समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन अर्पिता, आज नहीं तो कल हमें आपको ये बात मासा को बतानी ही होगी। अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं, हमें आज नहीं तो कल बताना ही होगा, लेकिन हम अभी ये बात मासा को नहीं बता सकते। प्लीज़ आप भी हमसे प्रॉमिस करिए कि ये डाइवोर्स वाली बात आप मासा को नहीं बताएंगे। अगर हमारी वजह से मासा को कोई तकलीफ हुई तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्लीज़ आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप मासा को ये बात नहीं बताएंगे। समर्थ ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर कब बताने वाली हैं आप मासा को ये बात? अर्पिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यही कोई 3-4 दिनों के बाद, जब मासा की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें बात बता देंगे, और हो सकता है तब तक भाईसा भी यहाँ पर आ जाएं, और वो आ जाएंगे तो सब कुछ संभाल ही लेंगे। अर्पिता ने समर्थ से इतना बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब आप भी हमसे वादा करिए। समर्थ ने हाँ में सिर हिलाया और अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ओके, आई प्रॉमिस, हम मासा को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अभिमन्यु के आने पर आप खुद उन दोनों को पूरी बात बता देंगी, है ना? इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। तभी समर्थ ने देखा कि अर्पिता काफी ज्यादा उदास थी। समर्थ आगे बढ़कर बोला, अर्पिता, प्लीज आप हमारे लिए एक फेवर करेंगी? जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, अर्पिता ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बोलिए, कैसा फेवर? अर्पिता की बात सुनते ही समर्थ ने उसके हाथ को बड़े हल्के हाथों से सहलाया और उसके बिल्कुल नज़दीक आकर उसके माथे को छूते हुए बोला, प्लीज़ आप उस जयराज की वजह से खुद को दर्द नहीं देंगी, आप हमसे वादा करिए कि आप उस आदमी की वजह से अपनी बाकी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगी, और प्लीज़ एक बार सारी चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचकर देखिएगा और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा, और प्लीज़ आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अभिमन्यु और मासा क्या सोचेंगे। हम जहाँ तक अभिमन्यु को जानते हैं, वो आपको जितना प्यार करता है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा कुछ भी होता तो अभिमन्यु भला आपको राणावत परिवार से यहाँ लेकर नहीं आता। आप जानती है ना, जब अभिमन्यु आपको यहाँ लेकर आया था तो उसने आपसे क्या कहा था? अर्पिता समर्थ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और जिस तरह से समर्थ उसे कम्फर्ट कर रहा था, अर्पिता पहले से काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम आपकी बात जानते हैं और हमें याद है भाईसा ने हमसे क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा हमारा साथ देंगे और हमें कुछ भी गलत सुनने और सहने की जरूरत नहीं है। समर्थ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप इतना कुछ क्यों सुनती और सहती थीं बेवजह। समर्थ ने थोड़े से गुस्से में ये बात कही और वो अर्पिता का हाथ नहीं छोड़ रहा था, और तभी अर्पिता ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, समर्थ, हम समझ गए आपकी बात, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। इतना बोलकर अर्पिता अपना हाथ उसके हाथ से हटाने लगी और उसने जैसे ही अपना हाथ हटाया, समर्थ ने अर्पिता के चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, क्या आप सच में हमें एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज एक बार हमारी बात मानकर हम पर भरोसा करके देखिए, हम कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और जिस तरह से समर्थ ने ये बात उससे कही थी, वो बस उसकी तरफ देखते ही रह गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे और दोनों में से कोई भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। तभी अर्पिता ने ही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ किया और वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, समर्थ, अभी हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज़। इतना बोलकर अर्पिता ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। समर्थ उसे ऐसा करते देखकर अपने मन में बोला, पता नहीं कब अर्पिता हमें समझ पाएंगी, कब उन्हें हमारी फीलिंग्स पर यकीन होगा कि हम सच में उनसे कितना प्यार करते हैं। इतना बोलकर समर्थ ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे उसके कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही समर्थ उसके कमरे से बाहर निकला, अर्पिता पीछे मुड़ी और समर्थ को जाते हुए देखने लगी। उसने अपना सर पकड़ा और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। समर्थ चुपचाप वहां से बाहर निकला और वो घर से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अभिनव पर पड़ी, जो महल के बाहर बने बगीचे में टहल टहल कर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। उसे देखकर समर्थ एक पल के लिए वहीं पर रुका और उसे घूरते हुए देखने लगा। अभिनव की नज़रें जैसे ही समर्थ पर गईं और वो बात करते करते रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर्थ अभी भी वहीं खड़ा उसे घूरते हुए देख रहा था और वो समर्थ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं जानता हूं मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह देखोगे। समर्थ ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपना हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, तुम और हैंडसम किस गलत फहमी में हो। इतना बोलकर समर्थ वहां से जाने लगा। तभी अभिनव ने उसके सामने आकर कहा, वैसे तुम अभिमन्यु के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम यहाँ पर क्यों रहते हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? समर्थ उसकी ये बात सुनकर उसे घूरते हुए देख रहा था। तभी समर्थ ने उसे बड़े ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा घर हो या ना हो, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब अभिमन्यु जब यहाँ पर नहीं है, तो तुम जैसे लोगों को देखने के लिए किसी को तो यहाँ पर होना पड़ेगा ना। बस तुम ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ हूँ। जब तुम यहाँ से जाओगे तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। और वैसे भी अगर ये घर मेरा नहीं है तो तुम्हारा भी कौन सा है?
समर्थ की बात सुनकर अभिनव बिल्कुल चुप हो गया और उसने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, ये तो बहुत ही मुंहफट है। मुझे तो लग रहा था ये कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन इसने तो जैसा लग रहा है पहले ही मेरे सारे सवालों का जवाब सोच रखा था। खैर कोई बात नहीं, मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो इससे बहस करना बेकार होगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी पीछे से नरेंद्र चलकर आया और उसने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतना बोलकर नरेंद्र समर्थ को घूरते हुए देखने लगा। अभिनव ने कहा, कुछ नहीं डैड, बस इससे थोड़ी सी बातें कर रहा था। समर्थ चुपचाप वहीं पर खड़ा था और तभी समर्थ ने नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चाचा जी, क्या मैं अभिमन्यु के भाई से बात नहीं कर सकता? नरेंद्र ने जैसे ही समर्थ की ये बात सुनी, वो एक कदम आगे आए और समर्थ को घूरते हुए बोले, समर्थ तुम इस घर के बेटे नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। और वैसे भी अभिमन्यु यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें अभिमन्यु बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समर्थ नरेंद्र की बात सुनकर समझ गया था कि नरेंद्र किस तरह से चिढ़कर उससे ये बात बोल रहा था। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं भला अभिमन्यु तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अभिमन्यु की जगह पर होता तो शायद अभी आप ये सब जो कर रहे हैं वो कभी ना कर पाते। अभिमन्यु तो दिल का बहुत अच्छा है, उसने तो सिर्फ आपको जेल पहुंचाया था, लेकिन अगर आप मेरी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते तो मैं किस हद तक गुजर जाता ये बात तो आपको पता भी नहीं, इसलिए शुक्र मनाइए कि मैं अभिमन्यु जैसा नहीं हूँ। इतना बोलकर समर्थ वहां से जाने लगा। तभी नरेंद्र गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, और कब तक पड़े रहोगे यहाँ? तुम्हें अपने घर जाने का होश है या नहीं? कब तक यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलोगे? टू बी कंटिन्यूड। क्या अर्पिता मानेगी समर्थ की बात, या उसके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है समर्थ के लिए? और क्यों छुपा रही है वो डाइवोर्स वाली इतनी बड़ी बात अपनी माँ से? और कैसा रिएक्शन होगा अभिमन्यु और उसकी मासा का इस डाइवोर्स वाली बात पर? क्या लगता है आपको, उसकी बात छुपाना सही है या फिर उसे अभी बता देना चाहिए?